آپ ہیں ایس بی ایس ہندی کے ساتھ اور خبروں کے لیے جائیں sbs.com.au/hindi پر۔
دوستو، ایس بی ایس ہندی پر بات کرتے ہیں آسٹریلیا میں جو بچوں کو لے کر قانون ہے، اس میں سے خاص کر کے بچوں کی کسٹڈی کو لے کر جو قانون ہے اس کے بارے میں جانکاری لیتے ہیں صدیق پانوالا جی سے، جو پرنسپل سولیسیٹر ہیں یونیسیج لیگل لا فرم میں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری سنستھائیں ہیں جو سماج کے لیے اپیوگی رہتی ہیں، اس میں وہ سکریہ کاریکر ہیں۔ صدیق جی، ایس بی ایس ہندی پر آپ کا سواگت ہے۔
بہت بہت دھنیہ واد۔
تو سب سے پہلے یہ بتائیے کہ چائلڈ کسٹڈی، اس کو لے کر آسٹریلیا میں کیا نیم، کیا قانون ہے؟
دیکھیے، جہاں تک بچوں کی کسٹڈی کا سوال ہے، آسٹریلیا میں جو قانون ہے وہ فیملی لا ایکٹ 1975، جو کہ کامن لا ایکٹ ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ اسٹیٹ ایکٹ ہوتے ہیں اور فیڈرل ایکٹ ہوتے ہیں۔ تو فیڈرل ایکٹ یعنی کامن ویلتھ ایکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا جیورسڈکشن پورا آسٹریلیا وائڈ ہوتا ہے۔ تو بچوں کے بارے میں جو قانون ہے وہ پورا آسٹریلیا وائڈ، آپ کسی بھی کونے میں آسٹریلیا کے ہو، یہ قانون آپ کو لاگو ہوتے ہیں۔ اور یہ قانون کو لے کر آپ جو کورٹ میں جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں فیڈرل سرکٹ کورٹ یا فیملی کورٹ۔ یہ کورٹ آپ کو نیائے دیتی ہے بچوں کے بارے میں۔ جہاں تک بچوں کے بارے میں کسٹڈی یا ان کے ساتھ رہنے کا سوال ہے، تو جب بھی فیملی بریک اپ ہوتا ہے یا سپریشن ہوتا ہے، یہ دو چیزیں خاص سمجھنی ہے۔ یہاں جو قانونی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ دوسرے پارٹنر سے الگ ہو جاتے ہو، اور انٹرسٹنگ یہ بھی ہے آسٹریلیا میں کہ آپ شادی شدہ ہو، ڈیفیکٹ ہو، سیم سیکس کپل ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جہاں تک بچوں کی کسٹڈی کا سوال ہے۔ تو آپ ہاں تو سپریشن کے دوران یا سپریشن کے بعد جب آپ ڈیورس لے لیتے ہو، تب بھی چائلڈ کسٹڈی کے بارے میں آپ پروسیڈنگ انیشیٹ کر سکتے ہیں۔ اور خاص چیز سمجھنے لائق یہ ہوتی ہے جہاں تک آسٹریلیا میں، کہ کورٹ جو دیکھتی ہے وہ بیسٹ انٹرسٹ کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کو اپلائی کرتی ہے بچوں کی کسٹڈی کے بارے میں۔ اب یہ کام، یہ بیسٹ انٹرسٹ بات آتی ہے تو ذرا میں آسانی سے سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ کورٹ جو دیکھتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کا میننگ فل ریلیشن شپ کیسے ہو دونوں پیرنٹس سے۔ خاص یاد رکھیں، یہ خاص سمجھنا ہے، کیونکہ ہم انڈین سب کانٹیننٹ سے آتے ہیں اور ہمارا ایک کلچرل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اس چیزوں کو ہم بڑی لائٹلی لے لیتے ہیں۔ ایک ہی چیز اس میں ہوتی ہے کہ اگر بچے کو ہارم کیا جاتا ہے یا بچوں کے ساتھ ہارم کے دو مدعے ہیں، ہارم کا مطلب ہے کہاں تو اس کو وائلنس ہے یا سیکسوئل اس کو تکلیف دی جائے، تبھی کورٹ اس بیسٹ انٹرسٹ کو بازو میں رکھ کر ایک پیرنٹس کو اس کی کسٹڈی دیتی ہے۔ یہ بیسک چیز ہے چائلڈ کسٹڈی کی۔ اب زیادہ تر ہوتا یہ ہے ہمارے انڈین کے اندر کہ جب بھی ہم، کیونکہ فیملی لا کا تین مدعے ہیں، ڈیورس ہے، چائلڈ کسٹڈی ہے، پراپرٹی سیٹلمنٹ ہے، آپ کو چائلڈ کسٹڈی تھوڑی الگ سے دیکھنی ہے، کیونکہ یہ جو ایشو ہے وہ آپ کو بچہ جب تک 18 سال کا نہیں ہو جاتا تب تک آپ کو ڈیل کرنا ہے۔ آپ بھلے ہی پارٹنر سے الگ ہو جائے، آپ ڈیورس ہو جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جب تک بچہ 18 سال کا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس میں مدعے یہ آ کر آتے ہیں کہ جب بھی کورٹ میں چائلڈ کو لے کر جاتے ہیں تو اس کا ایگریمنٹ ہوتا ہے، پیرنٹنگ ایگریمنٹ، اور پیرنٹنگ ایگریمنٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ کو جانے سے پہلے کوشش کرنی ہے کہ جو پروفیشنل میڈیٹر ہوتے ہیں، کاؤنسلر ہوتے ہیں، ان کی مدد سے اگر آپ یہ ایگریمنٹ کر لو تو آپ کے حق میں بہت ہی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ کورٹ کی پروسیڈنگس ایکسپینسیو ہوتی ہیں، وقت جاتا ہے اور بڑی ڈریننگ ہوتی ہے ایموشنلی، صرف دو پیرنٹس کے لیے نہیں بچے کے لیے بھی۔ تو سب سے بڑھیا ہوتا ہے، کیونکہ یہاں سسٹم اچھی ہے جو کہ کاؤنسلنگ اور میڈیشن پرووائڈ کرتے ہیں، وہ زیادہ تر فری آف کاسٹ ہوتا ہے۔ تو اس کی مدد سے آپ جو بھی ایگریمنٹ پر آؤ گے تو وہ ایگریمنٹ آپ کورٹ اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے یہاں پر۔ اگر آپ لوگ ایگری نہیں ہوئے تو پھر کورٹ اس میں انٹرفیئر کرتی ہے، اور پھر کورٹ قانون کے مطابق، جیسے میں نے آگے بتایا کہ بیسٹ انٹرسٹ آف چائلڈ، اور اس کے علاوہ جو مدعے دھیان میں لیے جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ بھی کون سا پیرنٹ زیادہ رسپانسبلٹی لے سکتا ہے، चाइल्ड बच्चा किसके साथ रहेगा, बच्चा कितना टाइम गुजारेगा किस पेरेंट्स के साथ, ये सब प्रैक्टिकल चीजें होती हैं जो दोनों पेरेंट्स मिलके भी कर सकते हैं।
ने कहा कि माता पिता साथ में मिलकर भी ये अग्रीमेंट बना सकते हैं, ये करार कर सकते हैं, तो आप बताइए कि कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखें जब वो ये अग्रीमेंट लिखने बैठे, क्या वो सिंपल शब्दों में भी लिखा जा सकता है या फिर उसके लिए लीगल लैंग्वेज होना कंपलसरी है?
बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। देखिए, इसमें कोई लीगल जारगन की जरूरत नहीं होती है जहां तक चाइल्ड एग्रीमेंट का सवाल है। इसमें तीन चार मुद्दे आपको खुद डिसाइड करना है कि देखिए ये बच्चा किसके पास रहेगा। अब 50-50 वाला जो है वो प्रैक्टिकली देखा जाता है कि बच्चा माँ के पास, उम्र को भी ध्यान में रखा जाता है। अब 2 साल का बच्चा है वो ज्यादातर माँ के पास ही रहेगा, वो एक नाइट से ज्यादा ठहर नहीं सकता है दूसरे पेरेंट्स के पास, तो ये प्रैक्टिकल चीज है। अब 5 साल का जो बच्चा है वो एक से ज्यादा नाइट ठहर सकता है, तो उसको आप ध्यान में लीजिए कि भी चलो एक नाइट इसके पास रहेगा, 6 नाइट यहाँ रहेगा। जहां तक वक्त का सवाल है तो आपको प्रैक्टिकल देखना पड़ेगा कि भाई मंडे टू फ्राइडे कौन काम कर रहा है, वीकेंड में कौन काम नहीं कर रहा है। ये चीजें आपको पेपर पर रखनी है। आपका बर्थडे में कौन सा वक्त कहाँ गुजारेंगे, बच्चे की बर्थडे आधा दिन कहाँ होगा, आधा दिन किस पेरेंट्स के पास होगा, मेजर जो फेस्टिवल्स और रिलीजियस जो फेस्टिवल है उस दिन बच्चा किसके पास रहेगा, ये चीजें आपको पीस ऑफ पेपर पर रखनी है। इसमें नई कोई बात नहीं है, इसमें कोई लॉयर की जरूरत नहीं है। जितना दोनों मिलकर करोगे उतना बच्चे और आप दोनों के लिए अच्छा होता है।
क्या ये नियम जो है वो अलग अलग वीजा होल्डर के लिए अलग अलग है, कोई ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, कोई पीआर होल्डर है, क्या ये सभी पर एक ही तरह से लागू होते हैं या अलग अलग तौर से?
जी हाँ, ये जहाँ तक चाइल्ड कस्टडी का सवाल है, डोमिसाइल का जो कानून है वो अगर आप ऑस्ट्रेलिया को अपना घर समझते हो तो वो इमीडिएटली लागू हो जाता है। पीआर और सिटीजन के लिए तो कोई सवाल नहीं है। जहाँ तक टेम्परेरी वीजा होल्डर है, जैसे कि इंटरनेशनल स्टूडेंट है या और वीजा होल्डर है, उसको भी ये कानून इमीडिएटली लागू होता है। आप अगर इसको डोमिसाइल यहाँ एक्सेप्ट कर लो कि भी हम ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया को हम अपना घर मानते हैं, तो चाइल्ड का सवाल है वहाँ तक ये मुद्दा ज़्यादा टेक्निकली खड़ा नहीं रहता है। हाँ, एक मुद्दा है जहाँ चाइल्ड सपोर्ट का सवाल है, तो चाइल्ड सपोर्ट जो होता है वो सिर्फ परमानेंट रेसिडेंट और सिटीजन के लिए चाइल्ड सपोर्ट एजेंसी काम करती है, तो ये सिर्फ ये दोनों के लिए है। अगर आप परमानेंट रेसिडेंट हो या सिटीजन हो और आप चाइल्ड सपोर्ट चाहते हो तो आपको चाइल्ड सपोर्ट एजेंसी का कॉन्टेक्ट करना है और वो दोनों की इनकम को मद्देनजर रख के उसकी एक फॉर्मूला होती है, उसके मुताबिक कौन सा पेरेंट्स कितना पैसा देगा वो तय किया जाता है।
कई बार ये भी सुनने आता है या जानने में आता है कि जब सेपरेशन होता है या फिर दो जो दंपति होते हैं उसमें पति पत्नी की नहीं बनती, तो कई बार एक पार्टनर बच्चे को लेकर भारत चला जाता है या अपने देश चला जाता है, ऐसे जो केसेस होते हैं उसमें क्या होता है?
बहुत बढ़िया इश्यू आपने उठाया रीता जी, ये बड़ा स्ट्रेसफुल इश्यू है चाइल्ड कस्टडी में। देखिए, जहाँ तक इंडिया का सवाल है, इंडिया एक हेग कन्वेंशन कहा जाता है चाइल्ड कस्टडी के लिए, तो जो सिग्नेटरी होते हैं हेग कन्वेंशन के लिए वो कंट्री में चाइल्ड को, इसको अब एब्डक्शन कहते हैं, अगर यहाँ से इंडिया ले गया गया और बच्चे को एक पेरेंट्स वापस नहीं लाता है तो बेसिकली चाइल्ड एब्डक्शन हुआ। तो हेग कन्वेंशन की सिग्नेटरी कंट्री में बड़ा आसान है, दो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट और सामने वाली गवर्नमेंट दोनों में एक सिस्टम होती है जो मिल के काम करके बच्चे को वापस लाती है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया इज नॉट सिग्नेटरी टू हेग कन्वेंशन, तो इंडिया से बच्चे को लाना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ जो बच्चा है और पेरेंट्स है वो इंडिया लेकर जाना चाहता है तो दूसरे पेरेंट्स की कंसेंट चाहिए, तो ये इतना मुश्किल नहीं है। करना क्या है, पहले मैं यहाँ की बात करूँगा कि यहाँ जो बच्चे हैं वो बाहर नहीं जाए उसके लिए आपको एयरपोर्ट वॉच लिस्ट में बच्चे का नाम डालना है ताकि दूसरा पेरेंट्स इसको इंडिया लेकर नहीं जाए। तो जैसे ही कोई फैमिली ब्रेकअप होता है आपको इनिशिएट करना पड़ेगा दूसरे पेरेंट्स को कि आप बच्चे का नाम एयरपोर्ट वॉच लिस्ट में डालें। उसके लिए आपको बड़ी सिंपल एप्लीकेशन होती है कोर्ट, और इसमें इमरजेंसी में भी कोर्ट काम करती है। तो ये एक्शन आपको जरूर लेना है, क्योंकि आपको लग रहा है कि बच्चे को इंडिया ले जा रहे हैं, एक बार एयरपोर्ट वॉच लिस्ट में नाम आ गया बच्चे का तो वो बाहर नहीं जा सकता है। अब दूसरे सिचुएशन की बात करूं कि पेरेंट्स वहां चले गए और एक पेरेंट्स ने बच्चे को रख लिया और दूसरा पेरेंट्स यहाँ आ गया। ये सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन होती है पेरेंट्स के लिए, क्योंकि यहाँ की कोर्ट को ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है इंडिया में। तो जो पेरेंट्स बच्चे को यहाँ लाना चाहता है उसको वहां जाकर उसको पहले तो प्रोड्यूस हैबियस कॉर्पस डालनी पड़ेगी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, और बच्चे को प्रोड्यूस वहां करेंगे, फिर बच्चे का कस्टडी वहां लेना पड़ेगा, और फिर उसको लेकर जो कोर्ट का ऑर्डर होगा वो यहाँ लाना पड़ेगा और बच्चे को लेकर यहाँ आना पड़ेगा। तो ये बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन होता है फैमिली ब्रेकडाउन में, क्योंकि इंडिया सिग्नेटरी नहीं है। अगर सिग्नेटरी होता तो यहाँ ही प्रोसीडिंग आप इनिशिएट कर लो, भले बच्चा इंडिया में, और इंडियन जो ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड होगी उसके वो उसमें मदद करके यहाँ लाएगी। ऑस्ट्रेलियन कोर्ट का जो भी जजमेंट होगा उसको आप इंडियन कोर्ट में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, और ना ही इंडियन कोर्ट का यहाँ अगर रिसिप्रोकल हो तो अलग है, नॉर्मली होता नहीं है। तो आपको फिर इंडिया जाकर, एक बार बच्चा निकल गया यहाँ से तो फिर इंडिया जाकर उसकी कस्टडी लेनी होगी और फिर उसको यहाँ लाना होगा, और जो जो इंडियन कोर्ट का डिसीजन होगा उसको फिर यहाँ आप फैमिली लॉ कोर्ट में रखेंगे, तो और जो इश्यूज है बच्चे के वो आप सेटल करके एग्रीमेंट कर सकते हैं।
तो जाते जाते ये भी प्रश्न पूछना चाहते हैं कि क्या इस संबंध में कोई मुफ्त कानूनी सहाय या फिर लीगल रेमेडी एड अवेलेबल है ऑस्ट्रेलिया में?
जी हाँ बिल्कुल, अगर आप परमानेंट रेसिडेंट है और सिटीजन है तो आपको लीगल एड अवेलेबल होती है। लीगल एड की फॉर्मूला के मुताबिक अगर आप उसमें फिट होते हैं तो ज्यादातर तो आपको मिलती है, खास करके सिंगल मम को तो अवेलेबल होती है, और जरूर आप उसकी मदद लीजिए। इसके अलावा कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो कंसिलिएशन का काम करती है, फ्री लीगल एडवाइस का काम करती है, तो काफी सपोर्ट अवेलेबल है सिंगल मम को, तो आप उसको जरूर से इस्तेमाल करें और उसकी बात को ध्यान में लेकर आप खास सुनिएगा। जब भी कोई सोशल वर्कर आपको बात कर रहा है तो आपके बेस्ट इंटरेस्ट में होता है। कभी कभी ये लग रहा है कि ये काम करूंगी तो बच्चा तो यहाँ से निकल जाएगा या बच्चे का क्या होगा, तो ऐसा नहीं है। सोशल वर्कर काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं और वो दोनों के हालात को मद्देनजर रख के आपको सजेस्ट करते हैं, तो उनकी बात भी सुनिए, और डेफिनेटली फ्री लीगल एडवाइस अवेलेबल है इस मामले में।
जी बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद सादिक जी, आपने SBS हिंदी के लिए समय निकाला। ये सारी जानकारी के लिए मैं हरिता आपका धन्यवाद करती हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों का भी धन्यवाद।
आपके विचार हमें बताएं, SBS हिंदी को फेसबुक पर लाइक करें और @SBS हिंदी को ट्विटर पर फॉलो करें।